ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन की निर्वाचन तालिका तीसरी बार संशोधन के बाद सार्वजनिक उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे की जाएगी प्रकाशित। बिना विवाद स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का प्रतिनिधियों से सभापति रवि लामिछाने का आह्वान। नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में लू का जोखिम बरकरार रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। अत्यधिक गर्मी के कारण नेपालगंज के 163 विद्यालय कल से 3 दिनों के लिए बंद। और श्रीलंका में डेंगू नियंत्रण के लिए सेना परिचालन। अब समाचार विस्तार से। चितवन के भरतपुर में जारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के प्रथम महाधिवेशन के निर्वाचन तालिका को तीसरी बार संशोधित कर सार्वजनिक किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज संशोधित तालिका सार्वजनिक की है। तालिका के अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधियों की अंतिम नामावली सार्वजनिक कर दी गई है। आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि आज शाम 5 बजे से महाधिवेशन प्रतिनिधियों की नामावली प्रकाशित की गई। उन्होंने बताया कि आज ही पार्टी सभापति तथा पार्टी के केंद्रीय सदस्यों के लिए नामांकन फॉर्म वितरण और पंजीकरण किया जाएगा। उनके अनुसार उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों के विरुद्ध दावेदारी या आपत्ति दर्ज कराने के लिए रात 10:30 बजे तक समय दिया गया है। आपत्ति प्राप्त उम्मीदवारों की जांच पड़ताल रात 11 बजे तक की जाएगी। रात 11:15 बजे तक उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के सचिवालय के माध्यम से अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। अंतिम नामावली रात 11:45 पर प्रकाशित की जाएगी। किसी ने बताया कि कल सुबह मतदान का पहला चरण होगा। आयोग के अनुसार मतदान समाप्त होने के 2 घंटों बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले चरण का परिणाम घोषित होने के साथ ही दूसरे चरण के नामांकन तथा अन्य कार्यक्रमों की कार्यतालिका प्रकाशित की जाएगी। इसी बीच आज संपन्न महाधिवेशन के बंद सत्र को संबोधित करते हुए सभापति रवि लामिछाने ने पार्टी के भीतर गुटबंदी न करने का निर्देश दिया। उन्होंने महाधिवेशन प्रतिनिधियों से अपने विवेक का प्रयोग करके आग्रह किया है। सभापति लामिछाने ने स्पष्ट किया कि नेतृत्व चयन के लिए किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद या मंत्री रह चुके व्यक्तियों को उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसी अफवाहें निराधार है। उन्होंने बिना विवाद स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का आह्वान किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के प्रथम महाधिवेशन के लिए 3,849 प्रतिनिधि निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन केसी ने जानकारी दी कि प्रतिनिधियों की प्रकाशित नामावली पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद प्रतिनिधियों की अंतिम संख्या निर्धारित की गई है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में गर्म हवाओं हीट वेव का खतरा बना रहेगा। लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, जबकि तराई के कुछ स्थानों पर हीट वेव जारी रह सकती है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार धनगढ़ी और नेपालगंज में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की अनुमान की गई है। वीरेंद्रनगर, घोड़ाही और भैरहवा सहित तराई के कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्म रहने की संभावना है। वहीं पोखरा, काठमांडू, ओखलडुंगा, धनकुटा, विराटनगर, धरान, जीरी और तापलेजुंग लगायत के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसमविद ने बताया कि आज के अधिकांश पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है। अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण नेपालगंज में कल से 3 दिनों के लिए 163 विद्यालय बंद किए जाएंगे। इससे पहले भी उपमहानगरपालिका ने गर्मी के कारण विद्यालयों में अवकाश घोषित किया था। छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और विद्यालय आने जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 10, 11 और 12 आषाढ़ को विद्यालय बंद रखने को निर्णय किया गया है। उपमहानगर की शिक्षा महाशाखा के प्रमुख गोरख बहादुर ने बताया कि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सहित विभिन्न निकायों के सुझाव के आधार पर विद्यालय स्तर की सभी कक्षाएं 3 दिनों तक बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के कारण कई विद्यार्थियों में बेहोशी, सिरदर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण दिखाई दे रही है, इसलिए विद्यालय बंद करना आवश्यक हो गया है। नेपालगंज उपमहानगर पालिका में 82 संस्थागत, 42 सामुदायिक और 39 धार्मिक विद्यालय सहित कुल 163 विद्यालय है। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर के अनुसार आज नेपालगंज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता केंद्र में होती है, इसलिए जनता को खुश और संतुष्ट करने वाले तरीके से काम किया जाना चाहिए। आज जिला हुला कार्यालय चितवन के निरीक्षण के बाद मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि जनता के को संतुष्ट होने पर ही संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ता है। मंत्री तिमल सिन्हा ने यह भी कहा कि कुछ चीजें डाक हुलाक के माध्यम से भेजना अधिक सुरक्षित होता है। वन्य जीवों के हमलों में अपने अभिभावकों को खो चुके मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों को आज छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने निकुंज कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रभावित परिवारों के छात्र छात्राओं को प्रति व्यक्ति 10,000 रूपये की दर से छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई है। यह आर्थिक सहायता उन विद्यार्थियों को प्रदान की गई है जो कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत है और जिन्होंने विभिन्न समयों पर बाघ, भालू, गैंडा तथा हाथी के हमलों में अपने अभिभावकों को खो दिया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने विदेश भेजने का झांसा देकर 23,65,000 रूपये की ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर सार्वजनिक किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में युवक राज पराजुली 50 वर्ष, टंक बहादुर खड़का 34 वर्ष तथा मनीष पोदार 34 वर्ष शामिल है। यह जानकारी कार्यालय के पुलिस उपरीक्षक सूरत कुमार थापा छेत्री ने दी। शिकायत के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पराजुली ने न्यूजीलैंड भेजने का वादा करके 16,65,000 रूपये, खड़का ने लिथुआनिया भेजने के नाम पर 5,00,000 रूपये और पोदार ने ब्रिटेन भेजने के झांसा देकर 2,00,000 रूपये लिए थे। पैसे लेने के बाद उन्होंने पीड़ितों को विदेश नहीं भेजा और संपर्क से बाहर हो गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हाल के दिनों में मच्छरों के फैलने से डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि होने के बाद इसे नियंत्रित करने के लिए सेना को तैनात किया जा रहा है। श्रीलंका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार डेंगू संक्रमण के कारण प्रतिदिन 1,000 से अधिक मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अनुराग कुमार दिशानायके के कार्यालय ने बताया कि श्रीलंका की सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने के लिए गठित विशेष इकाइयों की सक्रिय रूप से भाग लेंगे। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और मांसपेशियों में दर्द होता है। गंभीर स्थिति में यह रक्तस्राव का कारण बन सकती है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इस वर्ष अब तक लगभग 50,000 डेंगू मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले के वर्ष में 2017 में 1,86,000 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई थी और 440 लोगों की मौत हुई थी। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर अपनी काली और सफेद धारियों वाली टांगों से पहचाना जाता है। यह ठहरे हुए पानी में प्रजनन करता है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विशेष सैन्य इकाइयों बनाई जाएगी और जो लोग अपने परिसर में मच्छरों के प्रजनन की स्थिति बने देंगे उनके खिलाफ भी कानून की शक्ति से पालना कराया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन के निर्वाचन तालिका तीसरी बार संशोधन के बाद सार्वजनिक उम्मीदवारों की प्रारंभिक नामावली रात 10 बजे की जाएगी प्रकाशित। बिना विवाद स्वस्थ और स्वच्छ तरीके से महाधिवेशन संपन्न कर इतिहास रचने का प्रतिनिधियों से सभापति रवि लामिछाने का आह्वान। नेपाल में मानसून प्रवेश कर चुका है, फिर भी तराई क्षेत्र में लू चलने की जोखिम बरकरार रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। अत्यधिक गर्मी के कारण नेपालगंज के 163 विद्यालय कल से 3 दिनों के लिए बंद और श्रीलंका में डेंगू नियंत्रण के लिए सेना परिचालन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।